एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, मेडिकल एथिक्स, मतलब चिकित्सा की दुनिया में क्या सही है क्या गलत। यह ऐसा मौजू है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है।
हाँ बिल्कुल, और इस चर्चा में हम टोनी होप की किताबों मेडिकल एथिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और मेडिकल एथिक्स से मिली अंतर्दृष्टि का सहारा लेंगे।
और ये विषय आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है? शायद इसलिए कि मेडिकल साइंस जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है,
उतनी ही तेजी से मुश्किल सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना, जैसे भाई इलाज के बारे में आखिरी फैसला कौन करे, डॉक्टर, मरीज, परिवार, और अगर अस्पताल में मान लीजिए एक ही वेंटिलेटर है तो वो किसे मिलना चाहिए?
सही बात है। जिंदगी और मौत से जुड़े ये फैसले, ये सिर्फ डॉक्टरों की सिरदर्दी नहीं है, हम सबको इनके बारे में सोचना पड़ता है कभी ना कभी।
बिल्कुल, तो आज हम किसी नतीजे टटोचने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही कोई साइड लेंगे।
हाँ, हमारा मकसद है टोनी होप ने जो सोचने का एक तरीका, एक फ्रेमवर्क दिया है, उसे समझना, एक तरह का नैतिक टूलकिट जैसा उन्होंने कहा।
ताकि हम सब जब भी ऐसे मुश्किल हालात का सामना करें तो थोड़ा बेहतर तरीके से सोच पाएं, सही सवाल पूछ पाएं।
तो चलिए पहले जरा टोनी होप के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे?
टोनी होप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल एथिक्स के एमेरिटस प्रोफेसर थे, सेंट क्रॉस कॉलेज के फेलो भी थे, मतलब एकेडमिक जगत में उनका बहुत सम्मान था।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, और जो उनके काम को खास बनाती है, वो ये कि वो सिर्फ एक दार्शनिक या एकेडमिक ही नहीं थे।
हाँ, उन्होंने साइकाइट्री यानी मनोचिकित्सा की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और प्रैक्टिस भी की थी।
अच्छा, तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का अनुभव था उन्हें।
जी हाँ, और यही दोहरा अनुभव उन्हें एक अनोखी समझ देता था। वो नैतिकता के बड़े सिद्धांतों को भी समझते थे और क्लिनिक या अस्पताल के कमरे की जमीनी हकीकत को भी।
इसी वजह से शायद उनका लिखने का अंदाज भी अलग है, मतलब वो सिर्फ भारी भरकम फलसफा नहीं बताते।
बिल्कुल, वो जटिल नैतिक मुद्दों को असली दुनिया के किस्सों, केस स्टडीज के जरिए समझाते हैं। उनकी बातें इसलिए डॉक्टरों को भी अपील करती हैं और आम लोगों को भी। वो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं।
तो संक्षेप में, उनकी ये किताबें किस बारे में हैं? क्या ये कोई गाइडबुक है?
गाइडबुक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये मेडिकल एथिक्स जैसे मुश्किल विषय का एक साफ और सीधा परिचय जरूर है। मकसद यही है कि इसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सके।
और उनका मुख्य तर्क क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं इन किताबों के जरिए?
उनका मूल तर्क ये है कि मेडिकल एथिक्स कोई नियमों की बनी बनाई लिस्ट नहीं है कि बस टिक मार्क करते जाओ। नहीं, ये एक सोचने का, तर्क करने का, बहस करने का लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
क्योंकि मेडिकल फील्ड ही ऐसी है जहां रोज नई नैतिक दुविधाएं आती हैं।
एकदम सही, जहां अक्सर अच्छे मूल्य ही आपस में टकरा जाते हैं। जैसे मरीज की मर्जी का सम्मान करना भी अच्छा है और उसका भला करना भी, पर कई बार ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो पाती।
तो फिर वो असल में किस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं?
सवाल ये है कि हम सब, मरीज, डॉक्टर, नर्स, समाज, इस लगातार बदलती, तकनीकी रूप से एडवांस होती और नैतिक रूप से उलझी हुए मेडिकल दुनिया में सोच समझकर, सिद्धांतों के आधार पर और हाँ, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए कैसे चलें, कैसे सही फैसले लें।
और इसके लिए वो कोई रास्ता सुझाते हैं, कोई तरीका?
हाँ, वो एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा देते हैं जिसे चार सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। ये काफी मशहूर है मेडिकल एथिक्स में।
चार सिद्धांत कौन कौन से?
पहला है स्वायत्तता, ऑटोनमी, यानी मरीज का अपने बारे में, अपने इलाज के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार।
ठीक है। दूसरा?
दूसरा है भलाई, बेनिफिसेंस, मतलब डॉक्टर का फर्ज है कि वो हमेशा मरीज का अच्छा करे, उसके हित में काम करे।
तीसरा?
तीसरा है नुकसान ना पहुंचाना, नॉन मेलिफिसेंस। ये हिपोक्रेटिक ओथ का मूल है, पहले कोई नुकसान ना पहुंचाओ, यानी मरीज को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना।
और चौथा?
चौथा है न्याय, जस्टिस। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों और यहाँ तक के बोझ का भी समाज में उचित यानी फेयर तरीके से बंटवारा हो।
तो ये चार सिद्धांत
हाँ
एक तरह से हमारे नैतिक कंपास की सुइयां हैं।
हाँ कह सकते हैं, लेकिन होप जोर देकर कहते हैं कि असली नैतिक काम तब शुरू होता है जब ये सुइयां अलग अलग दिशा में इशारा करने लगे, जब स्वायत्तता और भलाई में टकराव हो या भलाई और न्याय में।
अच्छा, तो मतलब ये सिद्धांत हमें जवाब नहीं देते बल्कि सोचने का एक रास्ता दिखाते हैं।
बिल्कुल,
जोर जवाब पे नहीं, सोचने के तरीके पे है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। होप इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो शुरुआत कैसे करते हैं?
वो शुरू करते हैं ये साफ करते हुए कि मेडिकल एथिक्स सिर्फ कानून या अस्पताल के नियम मानना भर नहीं है, ये उससे आगे की चीज़ है। ये है मेडिकल प्रैक्टिस में उठने वाले नैतिक सवालों का तर्क के साथ व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करना।
और वो ये भी कहते हैं ना कि मेडिकल फैसले सिर्फ साइंटिफिक नहीं होते।
हाँ, बहुत ज़रूरी बात। हर मेडिकल फैसले में कहीं ना कहीं हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं शामिल होती हैं। कोई इलाज कितना सफल है ये सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होता, ये भी देखना होता है कि वो मरीज की जिंदगी की क्वालिटी पर, उसकी प्राथमिकताओं पर कैसा असर डाल रहा है।
मतलब हर फैसले में एक नैतिक परत होती ही है।
बिल्कुल।
और यही वो चार सिद्धांत काम आते हैं, स्वायत्तता, भलाई, नुकसान न पहुंचाना और न्याय। मान लीजिए कोई मरीज है जो डायबिटीज का है लेकिन इंसुलिन लेने से मना कर रहा है।
हाँ।
तो यहाँ उसकी स्वायत्तता, मना करने का हक और डॉक्टर की भलाई करने की जिम्मेदारी, इलाज से सेहत सुधारना आमने सामने है। यहीं से नैतिक सोच विचार शुरू होता है।
आपने स्वायत्तता की बात की, होपायन एस्ट्रोनॉमी पे काफी जोर देते हैं ना आजकल, पेशेंट सेंटर्ड केयर की बहुत बात होती है।
हाँ, होपायन इसको मेडिकल इतिहास का एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव मानते हैं। पहले वो जमाना था जब डॉक्टर साहब ने जो कह दिया वो ही पत्थर की लकीर होती थी, एक तरह का पितृ सत्तात्मक मॉडल था।
हाँ, मेरे दादाजी के जमाने में तो ऐसा ही होता था।
बिल्कुल। लेकिन अब जोर इस बात पर है कि मरीज को उसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उसके विकल्प बताए जाएं और फैसला लेने की प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाए। इसे ही सूचित सहमति कहते हैं।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
सुनने में तो ठीक लगता है, जानकारी दो हाँ या ना पूछो, पर इसमें कई पेंच हैं। पहली बात, पूरी जानकारी क्या होती है, कितनी तकनीकी डिटेल बताना जरूरी है। दूसरी बात, क्या मरीज वाकई उस जानकारी को समझ पा रहा है, खासकर जब वो बीमार हो, डरावा हो।
हाँ, ये भी है। और क्या वो फैसला बिना किसी दबाव के ले रहा है, परिवार का, दोस्तों का या कभी कभी डॉक्टर का भी दबाव हो सकता है।
बिल्कुल। और सबसे मुश्किल स्थिति तब आती है जब मरीज कोई ऐसा फैसला ले रहा हो जो डॉक्टर की नज़र में उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। मान लीजिए कोई मरीज जीवन रक्षक सर्जरी से इनकार कर दे।
तब क्या करें? मरीज की मर्जी का सम्मान करें या जान बचाने की कोशिश करें? स्वायत्तता बनाम भलाई।
यही है क्लासिक नैतिक दुविधा। होप कहते हैं यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, हर केस को अलग से देखना होगा। मरीज के समझने की क्षमता का आकलन करना होगा, उसके वैल्यूज को समझना होगा।
ठीक है, अब आते हैं अगले दो सिद्धांतों पर, भलाई और नुकसान ना पहुंचाना। ये तो शायद डॉक्टरों के सबसे पुराने कर्तव्य हैं।
हाँ, ये पारंपरिक मेडिकल नैतिकता की जड़ में है। डॉक्टर का पहला काम है मरीज का भला सोचना और उसे नुकसान से बचाना।
लेकिन इसमें भी क्या कोई मुश्किल आती है? भला करना तो सीधा लगता है।
लगता है, पर होता नहीं हमेशा। कई बार ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि मरीज के लिए सबसे अच्छा क्या है। आपने कैंसर के मरीज का उदाहरण दिया था ना?
हाँ, कीमोथेरेपी वाला।
हाँ, एक तरफ है जिंदगी के कुछ महीने या साल बढ़ा देने की संभावना, दूसरी तरफ उस इलाज के भयानक साइड इफेक्ट्स जो जिंदगी की क्वालिटी को बहुत गिरा सकते हैं। यहाँ भलाई के भी अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लंबी जिंदगी या बेहतर जिंदगी।
यहीं पर शायद वो ढोरे प्रभाव का सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। ये थोड़ा मुश्किल सा नाम है।
हाँ, ये थोड़ा पेचीदा सिद्धांत है, पर खासकर जीवन के अंतिम पड़ाव की देखभाल, पैलिएटिव केयर में बहुत अहम है। ये कहता है कि कभी कभी कोई ऐसा काम करना नैतिक रूप से जायज हो सकता है जिसका असल मकसद तो अच्छा है, जैसे असहनीय दर्द कम करना, लेकिन उसका एक बुरा नतीजा भी हो सकता है जिसकी हमें उम्मीद है पर वो हमारा इरादा नहीं है, जैसे मौत का थोड़ा जल्दी आ जाना।
अच्छा, मतलब इरादा अच्छा होना चाहिए।
हाँ, शर्त यह है कि बुरा नतीजा आपका इरादा ना हो, वो अच्छे नतीजे का साइड इफेक्ट हो और अच्छा नतीजा इतना महत्वपूर्ण हो कि वो बुरे नतीजे के जोखिम को जायज ठहरा सके। जैसे आखिरी स्टेज के कैंसर मरीज को दर्द से राहत देने के लिए मॉर्फिन की हाई डोज देना, भले ही उससे सांस थोड़ी धीमी हो जाए।
समझ गया। अभी तक हम ज्यादातर डॉक्टर और एक मरीज के रिश्ते की बात कर रहे थे, लेकिन चौथा सिद्धांत न्याय हमें एक बड़े कैनवस पर ले जाता है।
बिल्कुल। न्याय का सिद्धांत हमें इंडिविजुअल मरीज से हटाकर पूरे समाज और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ मुख्य सवाल है वितरणात्मक न्याय,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
मतलब हमारे पास जो स्वास्थ्य संसाधन है, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के बिस्तर, दवाइयाँ, पैसा, वो सीमित है। तो उनका बंटवारा कैसे हो, किसे क्या और कितना मिले?
ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, जैसे वो आईसीयू बेड वाला उदाहरण।
हाँ, या मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक ही किडनी उपलब्ध है और कई मरीज इंतजार कर रहे हैं, किसे मिलनी चाहिए? जो सबसे ज्यादा बीमार है, जो सबसे जवान है, जिसने पहले अप्लाई किया था, या जिसका समाज में ज्यादा योगदान है?
उफ, इसके तो कोई आसान जवाब हो ही नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं, और होप यही दिखाते हैं कि न्याय को लेकर भी अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हेल्थ केयर एक वस्तु है जिसे बाजार तय करे, कुछ उपयोगितावादी हैं जो कहते हैं कि फैसला ऐसा हो जिससे समाज को कुल मिलाकर सबसे ज्यादा फायदा हो।
और कुछ शायद बराबरी की बात करते होंगे।
हाँ, समतावादी नजरिया कहता है कि हर किसी को कम से कम एक बुनियादी स्तर की देखभाल का हक होना चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक हैसियत कुछ भी हो। ये सारी बहस दिखाती है कि मेडिकल एथिक्स के फैसले सिर्फ क्लिनिकल नहीं होते, वो गहरे राजनीतिक और आर्थिक सवाल भी उठाते हैं।
ये तो बड़े सामाजिक मुद्दे हो गए। होप कुछ और भी ज्यादा संवेदनशील या विवादास्पद विषयों पर भी बात करते हैं।
हाँ, वो जीवन की शुरुआत और अंत से जुड़े बहुत मुश्किल नैतिक सवालों को भी उठाते हैं, जैसे मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रियो की नैतिक स्थिति का सवाल।
मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे का नैतिक दर्जा क्या है?
हाँ, क्या वो गर्भाधान कंसेप्शन के क्षण से ही एक पूर्ण व्यक्ति माना जाना चाहिए जिसे जीवन का पूरा अधिकार है, या उसकी नैतिक हैसियत धीरे धीरे विकसित होती है? इस पर दुनिया भर में अलग अलग धर्मों और दर्शनों में बहुत गहरे मतभेद हैं।
और इस सवाल का जवाब तय करता है कि हम गर्भपात, आईवीएफ में बचे हुए भ्रूणों के इस्तेमाल या स्टेम सेल रिसर्च जैसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं।
बिल्कुल, इसी तरह जीवन के अंत से जुड़ा इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया और चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड का सवाल है।
ये शब्द सुनते ही मन में एक बेचैनी सी होती है।
हाँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। होप यहाँ बहुत ध्यान से अलग अलग स्थितियों में फर्क करते हैं, जैसे मरीज की अपनी मर्जी से जीवन समाप्त करने में मदद करना, वॉलंटरी यूथेनेशिया या असिस्टेड सुसाइड, और उस मरीज का जीवन समाप्त करना जो सहमति देने की हालत में ही नहीं है, नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया, या किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे मार देना, इनवॉलंटरी यूथेनेशिया, जो कि हत्या है।
और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं?
पक्ष में तर्क होते हैं मरीज की स्वायत्तता का सम्मान, असहनीय पीड़ा से मुक्ति और करुणा। विपक्ष में तर्क होते हैं जीवन की पवित्रता का सिद्धांत, ये डर कि कहीं हम एक फिसलन भरी ढलान, स्लिपरी स्लोप पर न उतर जाएं, जहां जीवन को कम आंका जाने लगे और कमजोर या असहाय मरीजों पर दबाव पड़ने का खतरा।
होप किसी केस का जिक्र करते हैं इसमें।
हाँ, वो यूके की डायन प्रेटी के केस का जिक्र करते हैं, जिन्हें मोटर न्यूरॉन की लाइलाज बीमारी थी। वो शारीरिक रूप से पूरी तरह लाचार होती जा रही थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से मरने के अधिकार के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ये केस इन नैतिक दुविधाओं को बहुत शिद्दत से सामने लाता है।
टेक्नोलॉजी की तरक्की, खासकर जेनेटिक्स में, उसने भी तो नए नैतिक सवाल खड़े किए हैं।
बहुत ज्यादा, जैसे जन्म पूर्व स्क्रीनिंग, प्रीनेटल स्क्रीनिंग। मान लीजिए टेस्ट से पता चलता है कि होने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम जैसी कोई आनुवांशिक स्थिति है, क्या इस जानकारी के आधार पर गर्भपात का फैसला नैतिक रूप से सही है?
ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसा करना विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के जीवन का अवमूल्यन नहीं है?
बिल्कुल। फिर है भविष्य बताने वाले जेनेटिक टेस्ट, प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग, जैसे हंटिंगटन रोग के लिए। अगर बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो क्या ये जानना हमेशा फायदेमंद होता है? ये जानकारी व्यक्ति और परिवार पर क्या असर डालती है?
और अब तो जीन एडिटिंग, क्रिस्पर जैसी तकनीकें आ गई हैं, डिजाइनर बेबी की बातें होने लगी हैं।
हाँ, ये भविष्य की बड़ी नैतिक चुनौतियां हैं। क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के जेनेटिक कोड को बदलने का अधिकार है? इसके क्या दीर्घकालिक परिणाम होंगे?
मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का क्षेत्र भी अपनी खास नैतिक चुनौतियों से भरा है।
वहाँ सबसे बड़ा और लगातार उठने वाला मुद्दा है क्षमता, कैपेसिटी और सहमति का। जब किसी व्यक्ति की मानसिक बीमारी उसकी सोचने, समझने और फैसले लेने की काबिलियत को प्रभावित कर ले हो, तो उसकी हाँ या ना का कितना वजन माना जाए?
और इसी से जुड़ा है अनैच्छिक उपचार, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट का सवाल, मतलब किसी को उसकी मर्जी के बिना अस्पताल में भर्ती करना या दवा देना।
हाँ, ये कब नैतिक रूप से जायज है? ये मरीज की स्वायत्तता और उसकी भलाई या उसे नुकसान से बचाने के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। चुनौती ये है कि मरीज के अधिकारों और उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए उसे जरूरी देखभाल कैसे दी जाए।
और आखिर में होप मेडिकल रिसर्च एथिक्स पर भी बात करते हैं, इंसानों पर होने वाले शोध की नैतिकता।
हाँ, यहाँ बुनियादी तनाव है रिसर्च के लक्ष्य, जिससे भविष्य के मरीजों को फायदा हो, और रिसर्च में भाग ले रहे मौजूदा लोगों की सुरक्षा और भलाई के बीच।
इतिहास में तो इस मामले में काफी भयानक उदाहरण मिलते हैं।
दुर्भाग्य से हाँ, नाजी जर्मनी के प्रयोग हों या अमेरिका का टस्केगी सिफिलिस स्टडी, ये दिखाते हैं कि बिना नैतिक नियमों के रिसर्च कितनी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए अब नूरनबर्ग कोड, हेलसिंकी घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश हैं।
इनमें मुख्य बातें क्या हैं?
सबसे जरूरी है सूचित सहमति, यानी प्रतिभागी को रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी हो और वो बिना किसी दबाव के हिस्सा लेने को राजी हो। दूसरा, रिसर्च से होने वाला संभावित फायदा हमेशा जोखिम से ज्यादा होना चाहिए, और प्लेसिबो यानी नकली दवा का इस्तेमाल कब और कैसे नैतिक है, इस पर भी स्पष्ट नियम है।
वाह, तो ये तो मेडिकल एथिक्स के लगभग हर जरूरी पहलू को होपने छुआ है। अगर इन सब बातों का निचोड़ निकालना हो तो कुछ मुख्य संदेश क्यों उभर कर आते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहला ये लिए है कि वो चार सिद्धांत, स्वायत्तता, भलाई, नुकसान न पहुंचाना और न्याय, ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है।
हाँ, ये लगभग हर नैतिक दुविधा को समझने और उस पर बात करने के लिए एक शुरुआती ढांचा देते हैं।
दूसरा मुख्य संदेश जो बार बार सामने आया वो है मरीज की स्वायत्तता का केंद्रीय महत्व।
बिल्कुल, आधुनिक मेडिसिन में ये एक बड़ा शिफ्ट है। डॉक्टर ही सब जानता है से हटकर मरीज के आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राथमिकता देना, और इसके लिए अच्छे कम्युनिकेशन और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है।
तीसरा, जो मुझे लगता है बहुत अहम है, वो ये कि नैतिकता में अक्सर कोई एक सही जवाब नहीं होता, ये एक संतुलन साधने का काम है।
हाँ, होप यही दिखाते हैं कि ये प्रतिस्पर्धी मूल्यों और सिद्धांतों के बीच एक मुश्किल चुनाव करने की प्रक्रिया है, इसीलिए हर मामले को उसकी खास परिस्थितियों में देखना जरूरी है। भारत में हम अक्सर देखते हैं ना कि किसी सीरियस मरीज के इलाज पर परिवार और डॉक्टरों में मतभेद हो जाता है, वहां यही संतुलन साधना पड़ता है।
चौथा, टेक्नोलॉजी लगातार नई नैतिक चुनौतियां खड़ी कर रही है।
हाँ, चाहे वो IVF हो, जेनेटिक स्क्रीनिंग हो या अब AI, विज्ञान हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, नैतिकता हमसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। भारत में जैसे सरोगेसी या लिंक चैन की तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े सवाल उठे हैं, वो इसी के उदाहरण हैं।
पांचवा, व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की भलाई के बीच का तनाव।
ये संसाधनों के बंटवारे में तो है ही, लेकिन महामारी या टीकाकरण जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में भी साफ दिखता है। एक तरफ व्यक्ति की आजादी है, दूसरी तरफ पूरे समाज की सेहत। कोविड के समय ये हमने बहुत करीब से महसूस किया है ना,
लॉकडाउन हो या वैक्सीन का वितरण।
बिल्कुल।
और आखिरी छठा संदेश,
वो है कमजोर और आवाजहीन लोगों के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी, चाहे वो गंभीर मानसिक रोगी हों, बच्चे हों या जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोग हों। एक नैतिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहचान इसी से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों की कितनी देखभाल करती है और उनका कितना सम्मान करती है।
होप की किताबों से कुछ ऐसे विचार भी निकलते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, सीधे कोटेशन न भी हों पर उनके आइडियाज।
हाँ, जैसे पहला विचार ये हो सकता है, मेडिकल एथिक्स का काम नियमों की किताब में सही जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि तर्क के साथ बहस करने का हुनर विकसित करना है, ताकि उन मुश्किल हालात से निपटा जा सके जहां हमारे बुनियादी मूल्य आपस में टकरा रहे हों।
मतलब ये प्रोसेस पर जोर है, फाइनल आंसर पर नहीं, सोचने का तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल। दूसरा अहम विचार, डॉक्टर ही बेहतर जानता है से मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करने तक का सफर मेडिकल इतिहास की सबसे अहम नैतिक क्रांतियों में से एक है। इसने डॉक्टर मरीज के रिश्ते को सही मायने में एक साझेदारी बनाया है।
हाँ, ये सूचित सहमति और साझा फैसले लेने के गहरे नैतिक महत्व को दिखाता है। मरीज सिर्फ एक रिसीवर नहीं, बल्कि अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर है।
और तीसरा विचार, जो शायद थोड़ा चुभता है लेकिन बहुत सच्चा है, जहां स्वास्थ्य संसाधन सीमित है, वहां किसी एक व्यक्ति के महंगे इलाज को हाँ कहने का मतलब अनजाने में ही सही किसी और के लिए किसी और चीज को ना कहना है। न्याय की मांग है कि हम ये मुश्किल फैसले, ये दुखद चुनाव खुले तौर पर, निष्पक्षता से और ऐसे सिद्धांतों के आधार पर करें जिनका हम बचाव कर सकें।
ये हमें हकीकत का सामना कराता है, हेल्थ केयर में हमेशा ट्रेड ऑफ होते हैं और ये फैसले पारदर्शिता से होने चाहिए।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आम लोग, डॉक्टर, पॉलिसी मेकर, वो इन विचारों का क्या करें?
मरीजों और उनके परिवारों के लिए मुझे लगता है ये जानकारी उन्हें आत्मविश्वास देती है। वो डॉक्टरों से बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे सिर्फ ये नहीं कि क्या इलाज है, बल्कि इसके अलावा और क्या विकल्प हैं। सबके फायदे और नुकसान क्या हैं, अगर हम कुछ न करें तो क्या होगा।
हाँ, और ये उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव की देखभाल जैसे मुश्किल विषयों पर अपने परिवार और डॉक्टरों से बात करने में भी मदद कर सकता है। एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल के बारे में सोचने का आधार देता है। नई तकनीकें जैसे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में भी वो ज्यादा सोच समझ कर फैसला ले सकते हैं।
और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए, डॉक्टरों, नर्सों के लिए,
उनके लिए ये चार सिद्धांत रोज की नैतिक उलझनों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी टूल किट है। जब किसी इलाज को लेकर दुविधा हो या टीम में मतभेद हो तो इन सिद्धांतों के चश्मे से देखने पर चीजें ज्यादा साफ हो सकती हैं।
इससे शायद उनका कम्युनिकेशन भी बेहतर होता होगा मरीजों और उनके परिवारों के साथ।
बिल्कुल, और ये उन्हें नैतिक तनाव, मॉरल डिस्ट्रेस, यानी सही काम जानते हुए भी उसे न कर पाने की पीड़ा को पहचानने और उससे निपटने में भी मदद कर सकता है, जो बर्नआउट का एक बड़ा कारण है।
और आम नागरिकों और पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी इसका महत्व है।
जरूर, स्वास्थ्य नीतियों पर जो बहसें होती हैं, चाहे वो किसी नई दवा को सरकारी मदद देने की बात हो या इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने की, उनमें लोग सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि न्याय, स्वायत्तता, भलाई जैसे सिद्धांतों पर सोचकर अपनी राय बना सकते हैं।
और पॉलिसी बनाने वालों को ये समझने में मदद मिलती है कि संसाधनों का बंटवारा करते समय सिर्फ आर्थिक पहलू ही नहीं, नैतिक पहलू और बराबरी का भी ध्यान रखना कितना जरूरी है।
सही का।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए नैतिक समझ उतनी ही जरूरी है जितनी वैज्ञानिक जानकारी या टेक्निकल स्किल। नैतिकता कोई अलग थलग किताबी चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की देखभाल का मानवीय पहलू है।
और मेरे लिए ये समझना बहुत अहम था कि मेडिकल एथिक्स में शायद ही कभी बिल्कुल साफ, काले और सफेद जैसे जवाब मिलते हैं। ये ज्यादातर एक ग्रे एरिया है जहां अच्छी चीजों के बीच ही मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित ढांचे जैसे इन चार सिद्धांतों के साथ हम इन मुश्किल सवालों का सामना ज्यादा ठंडे दिमाग से और ज्यादा तर्कसंगत तरीके से कर सकते हैं। ये संवाद को बढ़ावा देता है, टकराव को नहीं।
श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल हम छोड़ जाते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और दूसरी नई तकनीकें हेल्थ केयर में तेजी से आ रही हैं, तो सवाल यह है कि हम स्वायत्तता, भलाई और न्याय के इन बुनियादी सिद्धांतों को इन नए संदर्भों में कैसे लागू करेंगे। जब एक एल्गोरिदम हमारी सेहत के बारे में फैसले सुझाएगा या शायद लेगा, तो नैतिकता कैसे सुनिश्चित होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आने वाले समय में बहुत गहराई से सोचना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।